on something again.
Mudli Padi? कल वाली
कल आने वाले कल
चलो नहीं भी पड़ी होगी तो भी हम सीधा चर्चा चालू करते हैं। तो कल की जो मुरली है वो है 15 नवंबर 1999। उसमें से कुछ प्रश्न निकाले गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर ही कल की मुरली और आज की जो मुरली साकार है उनकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है मुरली से कल की अव्यक्तवाणी संडे की, पहला प्रश्न है होली हंसों की विशेषता क्या है। पहला प्रश्न है, आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली से मिलने आए हैं, एक एक बच्चा होली हंस है। मुरली की शुरुआत। तो प्रश्न है, होली हंसों की विशेषता क्या है? क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों का चिंतन करते हैं और
स्वच्छ
होते हैं। जो हंस होता है वो कैसा होता है? स्वच्छ होता है। हंस जो है वो प्रतीक है पवित्रता का, प्यूरिटी का। और
हंस आकर्षक होता है।
मोती नीरशीर अलग करने वाला होता है, पानी और दूध इसको अलग करने वाला होता है। और लंबी उड़ान भरता है हंस जो होता है वो, फिडिलिटी वफादारी के लिए, मोनोगैमस रिलेशनशिप, एक से ही वफादार होता है वो, उसके लिए भी लव फिडिलिटी एंड मोनोगैमस रिलेशनशिप ये हंसों की निशानी है। और हाँ मोती चुभता है। और क्या करते हैं हंस? हंस की विशेषता, हंस किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। हंस के ऊपर कोई भी पानी नहीं ठहरता है। जैसे पवित्रता के लिए कमल का गायन है, कमलवत जीवन संसार में पानी में रहते हुए भी पानी से अस्पर्शित, उसी तरह हंस जो होता है उसके जो पंख होते हैं वो भी पानी को स्पर्श नहीं कर सकते, पानी उसे स्पर्श नहीं करता। और निर्णय शक्ति विवेक का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में किसका वाहन है हंस? माँ सरस्वती का वाहन है हंस। और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। और हंस का क्या महत्व है? बाबा पूछ रहे हैं होली हंसों की विशेषता क्या है। हंस का पहले ही भारतीय संस्कृति में या विश्व भर की संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व है। नॉर्डिक कंट्रीज जो है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, उन सभी देशों की जो निशानी है फ्लाइंग स्वैन्स, उड़ते हुए हंस, तो उन देशों में भी महत्व है। और क्या महत्व है हंस का भारतीय संस्कृति में? इकट्ठा रहते हैं, संगठन में रहते हैं। एक 2013 का न्यूज़पेपर है जिसमें इस तरह का चर्चा आई थी कि उन पर अगर उनका जो नेस्ट नीड जो होता है उस पर अगर कोई आक्रमण करता है तो उस न्यूज़पेपर में था कि उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था विदेश में कहीं। तो वो अपने संगठन में रहते हैं, उनमें एकता होती है सभी हंसों में। और सहयोग, किसको सहयोग देते हैं? इकट्ठे रहते हैं इसलिए एक दो को सहयोग देते हैं। और सुभाष भाई, हंसों की विशेषता?
हंस माना
हंसते
रहते
हैं। हंस माना हंसते रहते हैं। अच्छा, हंसमुख होता है, हंसमुख नहीं। अच्छा चलो, और हाँ ऊपर से शांत होते हैं परंतु पैर अंदर से चलते रहते हैं, वो दिखते नहीं, नहीं दिखते नहीं है। तो शायद ऐसा कर सकते हैं जैसे आज की मुरली में है, सर्विसेबल बच्चों की निशानी है मुरली के अंदर से, वो तो है मुरली के अंदर। एक दूसरा वाक्य है, सर्विसेबल बच्चों की निशानी है ज्ञान बुद्धि में टपकता रहता है। तो यहाँ पर भी जैसे अंदर गति है, बाहर से शांत है, और हंसों की निशानी। हंस परमहंस सन्यासियों के प्रकार है ना, कुटीचक बुद्रुक हंस परमहंस, चार उनमें प्रकार होते हैं। एक है हंस जो सबसे ऊंची अवस्था है सन्यासियों की, वो होती है परमहंस की अवस्था। उसके भी ऊपर अवधूत बताया है, पर परंतु परमहंस जो है वो बहुत ऊंची अवस्था है योगियों में। परमहंस अर्थात उस अवस्था को पहुंचा हुआ व्यक्ति जहां पर अध्यात्म का जैसे शिखर है, वो जहां पर संसार की वस्तुएं, संसार के विकार, वो सबसे ऊपर उठ चुका है व्यक्ति। परमहंस गतिम तुरियम नच भाति भूत संगम, वो अपने शास्त्र में तो बताया अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। नच भाति भूत संगम, ये जो भूत का संग है, ये जो देह है, ये मैं नहीं हूं, इस भाव में जो संपूर्ण स्थित है, वो जो तुरिया अवस्था है, स्वप्न सुषुप्ति और जागृति, ये तीन अवस्था है। और चौथी जो अवस्था इससे परे उसका कोई नाम नहीं है, इसके लिए उन्होंने कहा द फोर्थ स्टेज, जिसे तुरिया कहा गया है, फोर्थ चौथा। तो वो जो अवस्था में स्थित है उसे परम हंस कहा जाता है। तो इतनी सारी विशेषता है। बाबा जिस विशेषता की यह बात कर रहे हैं वो है मोती और कंकड़, व्यर्थ और समत, नीर शिर अलग कर देना। ऐसी दिव्य बुद्धि कि जिसमें ये पता चल जाए कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, उनको अलग कर देना और केवल वही लेना जो समर्थ है। तो होली हंस की यह निशानी है। होली हंस शब्द मुरलियों में बहुत आता है, शास्त्रों में होली हंस नहीं है। होली हंस शब्द अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर बना हुआ है, ऐसा कोई शब्द उधर तो नहीं है। उधर राजहंस शब्द है, ये बाबा ने निर्माण किया हुआ शब्द है। होली हंस पवित्र हंस, और हंस पवित्रता का भी प्रतीक है, संपूर्ण पवित्रता का प्रतीक है वो। तो हम सभी कौन है? होली हंस है, अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा है, अर्थात जिन्हें संसार स्पर्श नहीं करता, अर्थात जो केवल समर्थ को उठाते हैं, अर्थात जो एक से संबंध है, जिसका वन मोनोगेमस रिलेशनशिप, फिडेलिटी, वफादार, ऐसे जो है वो हंस है। सरस्वती का वाहन हंस है। तो ये सारी होली हंसों की विशेषता कहो, निशानी कहो। दूसरा प्रश्न है मुरली में, मन में ज्ञान रत्नों का मनन कैसे करें? मुरली में बाबा कह रहे आज बाप दादा होली हंस मंडली को देख रहे हैं। एक एक बच्चा होली हंस है। होली हंस क्या करता है? व्यर्थ को छोड़ता है और समर्थ को, ज्ञान रत्नों को झुकता है। एक एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गया है। एक एक बच्चा ज्ञान रत्नों से भरपूर है। एक एक रत्न अमूल्य रत्न है। तो यहाँ प्रश्न है, मन में ज्ञान रत्नों का मनन कैसे करें? पहले तो ज्ञान रत्नों को इकट्ठा करना पड़ेगा। रत्न मनन करने के लिए रत्न चाहिए। क्या हमारी बुद्धि ऐसी दिव्य हुई है कि जिससे जिसमें बहुत सारे ज्ञान रत्न भरे पड़े हैं? क्या इसमें व्यर्थ ही भरा पड़ा है? संसार की बातें, संसार का चिंतन, संसार की वस्तुओं का चिंतन, क्या यही सब परिस्थितियों का चिंतन, क्या इसमें ज्ञान रत्न भी भरे है? जब तक बुद्धि में रत्न नहीं भर जाते, कुछ दिन पहले मुरली में एक वाक्य था, चार दिन पहले, ये ज्ञान कंठ करने का है, ये ज्ञान कंठ करने का है। कुछ कुछ पॉइंट्स पकड़ लेना है, कभी भी काम आ सकती है। सुन लिया केवल उससे नहीं होगा, सुना बहुत अच्छा था इससे नहीं होगा, ये तो भक्ति मार्ग है। गए, सुना, लिखा, सब भक्ति मार्ग। कुछ कुछ पॉइंट्स बुद्धि में धारण करने के लिए पहले हमें उन्हें बुद्धि में रखना पड़ेगा, रखने के लिए रिवाइज करना, स्मृति में रखना, बार बार चर्चा करना, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। अब प्रश्न है मन में ज्ञान रत्नों का मनन कैसे करें, क्या करें जिससे मन में ज्ञान रत्नों का मनन हो। अव्यक्त मुरली है, 1st October 1988, सारी की सारी मुरली मनन शक्ति पर है। अब तक की चली हुई सर्वश्रेष्ठ मुरली मनन पर, जिस पर बाबा ने सारा के सारा फोकस केवल एक ही बात पर किया है, मनन कैसे करें। 1st October 1988 की ये मुरली है, मनन शक्ति। बाबा ने जो बहुत सारी बातें उसमें कही है, एक ही बात बार बार कही है, इन सब का कारण ये है। नंबर वार क्यों होते हैं, क्योंकि कारण है मनन शक्ति की कमी है। अंतर्मुखी बन, ज्ञान सागर की गहराई में जाओ। जो चार बातें कही है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उस रीति से इन बातों को देखो, समझो। इधर आ जाइए ना, कुछ इधर। तो मनन करना, प्रश्न फिर भी वहीं पर है, ज्ञान रत्नों का मनन कैसे करें। राजेश भाई, उस भाव को समझना, किस भाव से वो कहा गया है और संदर्भ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, किस भाव से कहा गया है, किस समय वो कहा गया है, सामने कौन बैठे थे। जैसे कल की ये जो मुरली चल रही है, बाबा की आंखों के सामने सारे के सारे कुमार बैठे हुए हैं। ये मुरली जो चल रही है कुमारों के प्रति चल रही है। तो मुरली कब चल रही है, कहाँ चल रही है, किसके आगे चल रही है, इसका भी ज्ञान चाहिए। और मनन कैसे करें, मनन करना है, मनन का क्या महत्व है, कब करना है, कैसे करना है, ये तो सभी को पता है, परंतु करना कैसे है, प्रश्न अब ये है। उसके ये प्रश्न बनाने, ये भी मनन की एक विधि है। अब प्रश्न जब बना दिए उसके, तो अब मुरली थोड़ी अलग रह गई एक तरफ। अब हमारे पास में प्रश्न है, हम इसमें फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर ये मुरली इतना बड़ा पैराग्राफ है, हम एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, सुनना तो जैसे बहुत प्रिलिमिनरी है, KG1 KG2 केवल। हर एक को मुरली खुद पढ़नी है, सुनना केवल ये बहुत बहुत टू मच प्रिलिमिनरी। हर एक को खुद पढ़ना है। अभी इतने पैराग्राफ में अगर हमने सुना और भूल गए। सुनाने वाले ने 2-3 अच्छे उदाहरण दिए, वो भी हमें थोड़े बहुत याद है और फिर भूल गए। परंतु अभी जब प्रश्न बनाए जाते हैं, इतने पैराग्राफ से ये 2 प्रश्न बनाए गए हैं, तो सीधा बुद्धि अभी मुरली एक तरफ, हम केवल प्रश्न पर फोकस कर रहे हैं, होली हंस अर्थात क्या, यहाँ पे उसको एक्सपांड कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। तो एक विधि है प्रश्न बना लेना। जो साकार मुरली में एक प्रश्न तो रहता ही है, वो एक प्रश्न में रुक नहीं जाना है, 2-3 प्रश्न बना लेने और फिर उन प्रश्नों का चिंतन करना। और उसका विस्तार करना, क्योंकि अच्छा अगर एक प्रश्न जो मुरली में ऑलरेडी है वो प्रश्न ले लेना, उत्तर नहीं देखना और उसके उत्तर निकालना, ये भी एक विधि है। तो पहली विधि है प्रश्न निकालना, दूसरा चिंतन मनन कैसे करें, मन में ज्ञान रत्नों का मनन कैसे करें, क्या करें, डिस्कस चर्चा करना, एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे के साथ शेयर करना। यदि हमें कोई नई पॉइंट आ गई है, नई टचिंग हुई है, या प्रश्न उत्पन्न हुआ है मन में, मुरली में ये तो आया है, परंतु जरूरी नहीं है कि सब बातों को तुरंत मान ही लेना। बाबा ने कहा यह ज्ञान अंधश्रद्धा का नहीं है, जज करो, मैं जो कहता हूं वो राइट है या शास्त्र में जो लिखा है वो राइट है। जज करना इसका अर्थ ये नहीं कि हम संशय बुद्धि बन रहे, संशय का तो वो तो छोड़ दिया है, संशय का जगत। अभी तो ज्ञान को समझना है उसके लिए बहुत सारे प्रश्नों की आवश्यकता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारे प्रश्नों की आवश्यकता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछना, कोई भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना। आया, क्यों है ऐसा, ये क्यों कहा गया है, क्योंकि साकार मूल्य 40 साल पहले चल रही है, क्या अभी भी इस समय भी वो उनका वही महत्व है या समय के साथ साथ वो बातें बदल गई है। तो प्रश्न और क्या कर सकते हैं मनन करने के लिए, ज्ञान योग धारणा सेवा, वो जो मुरली है 1 अक्टूबर 1988 उसमें बाबा ने कहा इन चार सब्जेक्ट्स में मुरली को डिवाइड करो और उसका चिंतन करो, ज्ञान से संबंधित क्या है, योग से संबंधित क्या है, धारणा से संबंधित क्या है, सेवा के संबंधित क्या है। परंतु ये भी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है क्योंकि इतना करना फिर एक जैसे आदत हो जाती है और फिर उतना कर दिया और छोड़ दिया, चिंतन करना बंद हो जाता है। ज्ञान वाली पॉइंट ज्ञान में डाल दी, योग वाली योग में डाल दी, धारणा वाली धारणा में डाल दी और सेवा वाली सेवा में डाल दी, बस हो गया, अभी काम पूरा हुआ। एक ही पॉइंट निकाल के उसकी गहराई में जाना, अनुभव ना हो, छोड़ना नहीं पॉइंट को तुरंत, संतुष्ट नहीं हो जाना कोई पॉइंट से, उसका पीछा करते रहना करते रहना करते रहना जब तक वो संपूर्ण हमारी बुद्धि में समझ में ना आ जाए सब। और एक विधि है लिखना, एक पॉइंट लेना, लिखना आरंभ, एक पॉइंट कोई भी उठा लिया उसके ऊपर लिखना। हम जब लिखने बैठते तो हमें आश्चर्य लगेगा कि इतनी सारी पॉइंट्स कैसे आ गई, कहां से आ गई ये पॉइंट्स, क्योंकि हम इतने समय से ज्ञान सुनते सुनते बुद्धि में बहुत सारी पॉइंट्स है परंतु वो पॉइंट्स समय पर याद नहीं आती क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं है। जैसे ही बुद्धि एकाग्र होती है, और लिखना एक कर्तव्य एक कर्म है कि जिसमें तुरंत एकाग्रता आती है, और वो एकाग्रता आते ही सारी पॉइंट, 10 पॉइंट हमने लिख दी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अब 10 पॉइंट हमको याद है, जो लिखता है वही भूल जाता है। लिखना तो बहुत आसान है कृति से क्योंकि बुद्धि एकाग्र हो जाती है, अगर उसको हटा लिया जाए और कहो कि अब बोलो तो शायद उसे कुछ भी याद ना आए। लिखने के पीछे भी माया है थोड़ी सी, लिख तो लिया बहुत अच्छा लिखा परंतु जो लिखा उसका कुछ भी पता नहीं, शायद वो लेके कोई दूसरा क्लास भी करा दे पर हम नहीं बोल सकते कुछ। इसलिए जो हमने लिखा है उसी को रिवाइज करना, समझना क्या लिखा है, ऐसे समझना ये हमने नहीं लिखा है किसी और ने लिखा है, जैसे किसी और का लिखा हुआ हम कितनी एकाग्रता से पढ़ते हैं, अपना लिखा हुआ हम बहुत कम पढ़ते हैं, इस रीति से नहीं पढ़ते कि हमें याद रखना है वो या समझाना है। और किस अवस्था में वो लिखा गया, अमृत वेले के बाद अगर वो लिखा गया तो बुद्धि बहुत एकाग्र होती है उस समय, तो बहुत पावरफुल पॉइंट्स वहां आ जाते हैं स्वतः ही। इसलिए लिखना एक विधि है मनन करने की। और
मनन से फायदे क्या होते
हैं, उसके फायदे क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना। मनन से ज्ञान स्पष्ट होता है, दूसरों को हम ज्ञान स्पष्ट रीति से समझा सकते हैं, मनन से बुद्धि शक्तिशाली होती, नशा सबसे पहले तो नशा, फिर खुशी, और व्यर्थ से स्वतः ही मुक्त हो जाते, समय सफल होता है, समय व्यर्थ नहीं जाता है, और हल्केपन का अनुभव होता है। उसके नए नए परत, जैसे उस पॉइंट को जो हमने 10 साल पहले समझा था और अभी जब मनन करके उसी पॉइंट को देख रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी। जैसे कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे तालाब है, तो हम अगर एक चोटी पर खड़े रहकर उसे देखते हैं तो कुछ और दृश्य दिखता है, हम दूसरी चोटी पर जाते हैं तो कुछ और दृश्य दिखता है, एक ही है वो, तो वो जो झील है एक ही है परंतु अलग अलग जगह से उसको अलग अलग रीति से देखा जा सकता है। इसलिए उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, ये भी एक विधि है मनन करने की। जैसे कोई पॉइंट आई है ज्ञान की, सोचो कि कोई अनपढ़ माता है, उसे ये कितना समझ में आया, उसकी क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में। दूसरा कोई वैज्ञानिक है, वो इसे किस रीति से लेगा। तीसरा कोई डॉक्टर है, वो इसको किस रीति से समझेगा? कोई इंजीनियर है, वो इसे किस रीति से समझेगा? जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, वो इसे किस रीति से समझेगा? जो बिल्कुल ज्ञान में ही नहीं है और उनके सामने ये पॉइंट रख दी जाए, वो इसे किस रीति से समझेगा? अलग 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 दृष्टिकोण से एक ही पॉइंट को देखना, एक पॉइंट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, तो ये भी एक विधि है। और मन में ज्ञान रत्नों का मनन कैसे करें? और क्या कर सकते हैं? उनके एक एक शब्द के अर्थ को समझना, शब्दार्थ जिसे कहते हैं। अगर हमें शब्दों का ही अर्थ पता नहीं तो हम उस वाक्य अर्थ को क्या समझेंगे? फिर गुणार्थ, भावार्थ, उसका भाव क्या है, कहने के पीछे कौन सा भाव था बाबा का। तो समय अनुसार, जैसे कहा कि देश काल परिस्थिति अनुसार मुरलियां चली है, उसको ही समझना कि देश काल परिस्थिति ये समय में ये परिस्थिति में इस देश में ये मुरली चली है, इस भाषा में चली है, उसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। और भी कुछ कर सकते हैं मनन करने के लिए? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस पॉइंट का कैसे करें? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुरली में आ गया है आज्ञाकारी बनो, क्यों बने आज्ञाकारी? जबरदस्ती आज्ञाकारी बनना, हर चीज से सहमत हो जाना। शिव बाबा से अगर हम असहमत हैं तो ये कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं है ना? कि है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यदि मतभेद है भगवान से तो सुषुम्ना भाई क्या कहेंगे? वो नाराज होगा कि हमारा मतभेद है? वो तो नाराज नहीं होगा कभी। हमें समझना है उस पॉइंट को। बाबा को हरा भी सकते हैं खेल खेल में। तो मतभेद होना अगर है कोई पॉइंट से, उसकी चर्चा की जाए। हमें एक तो पता है A=B, परंतु हम मन नहीं मान रहा है, तो चलो A is not equal to B। अभी इसके पूरा गहराई में जाओ, A is not equal to B, A is not equal to, करते 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 पता चलेगा कि नहीं, A is equal to B। पर ये जो रियलाइजेशन हुआ ये सब प्रोसेस के बाद, वो जो रियलाइजेशन है बहुत पक्का होगा। पहला जो था वो तो बस ले लिया, ब्लाइंड ओबीडियंस था वो वाला नहीं। अभी विथ अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी पॉइंट हो तुरंत उसे स्वीकार नहीं करना, विद्रोह होना चाहिए मन में, थोड़ा रिबेलियन, रिबेल, विद्रोही, थोड़ा सा विद्रोह चाहिए, विद्रोह का भाव। नहीं तो बस आ रहा है, सुन लिया, समझा नहीं, बस हाँ 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 कहते जा रहे, परंतु समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है और ना ही वो प्रैक्टिकल में आ रहा है। इसके लिए उसका चिंतन, उसका मनन, उसका अध्ययन, उसका थोड़ा विरोध और फिर एक्सेप्टेंस। वो जो एक्सेप्टेंस होगा बाद में, दैट विल बी कंप्लीट एक्सेप्टेंस। जिन्होंने पूर्ण रीति से इसको एक्सेप्ट अभी तक किया नहीं है, हमने इस ज्ञान को, ये ज्ञान जो है सबकॉन्शियस में ही घूम रहा है, वो अभी अवचेतन तक पहुंचा नहीं है, इसके लिए संपूर्ण धारणा भी नहीं हो रही है। अवचेतन ने उसे शायद स्वीकार नहीं किया, उसे हम समान देते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सबकॉन्शियस माइंड एक किक मारता है इस संकल्प को और आकाश में, उसे उसने धारण नहीं किया है, वो सारा कॉन्शियस पे ही चल रहा है, चेतन मन ही उस पर खेल रहा है, वो अभी तक वो नीचे अंदर नहीं गया है। इसके लिए अच्छा, इस बारे में तो चर्चा हमने बहुत बार की है, चिंतन कब करना है, अमृत वेले के बाद करना है, शाम को कर सकते हैं, दिन भर भी कर सकते हैं। बाबा ने तो उस मुरली में कहा है दिन भर चिंतन को बढ़ाओ, जब भी समय मिले। उस मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने, जरूरी नहीं है कि जब तुम स्थूल कार्य करते हो तो बुद्धि तो फ्री रहती है, दो कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत कम कार्य होते हैं जिसमें माइंड इंटेलेक्ट का बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बाकी तो यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स है जो ऑपरेशन करते हैं उनको इतनी आदत हो गई होती है कि कई कई डॉक्टर्स हमने देखे जब तक वो गीत नहीं रखता है ओटी में तब तक वो ऑपरेशन नहीं करते, गीत बजना चाहिए फिल्मों का तब वो ऑपरेट करते, तो सारा ध्यान उधर, और ये ऑपरेशन करने की तो इतनी आदत हो गई है कि तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा है बुद्धि मनन कर सकते, ये कारण नहीं दे सकते कि मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसे बहुत काम का कम कार्य है जिसमें इंटेलेक्ट बुद्धि बिजी रहती है। बहुत सारे कार्य तो हम इतनी बार, जैसे सेंटर्स और सेंटर्स की बहनें, बहुत सारे गेस्ट आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते, परंतु ये सारे कार्य वो अभी से नहीं कर रहे, कब से कर रहे। भोजन बनाना, इसकी संभाल करना, उसकी संभाल करना, ये सब कार्य करते हुए भी चिंतन किया जा सकता है यदि लक्ष्य हो तो। लक्ष्य ही नहीं तो कहां से चिंतन होगा। हमने हमारे मन को कोई टॉपिक ही नहीं दिया है। टॉपिक यदि दिया जाए कि ये टॉपिक है 9 बजे से 12 बजे तक सुबह इस टॉपिक पर चिंतन करना है, और ये टाइम जो है हम बहुत बिजी भी है, शायद कोई ड्राइविंग कर रहा है या कुछ कर रहा है या कुछ कर रहा है, केवल रटने वाली बात नहीं है, ना ही कुछ लिखने वाली बात है, केवल मनन करना, उसका विस्तार करना। जब तक ये कार्य नहीं किया जाएगा वो पॉइंट सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं सकती है। इसके लिए एक पॉइंट लेना और उसका विस्तार करना। जैसे छोटे बच्चों को निबंध लिखने को दिया जाए, मेरी स्कूल, तो वो लिखता है। उसी तरह यदि हमें कुछ लिखने को दिया जाए, ऐसा आज्ञाकारी कैसे बने, तो यहां केवल लिखना भी नहीं है, मन के मन में सोचते जाना उसके बारे में, तो स्वतः ही धीरे धीरे बुद्धि दिव्य बनती जाएगी। तो ये दूसरा प्रश्न था। एक आपने जो बताया मनन से क्या क्या फायदे होते हैं उसके ऊपर सोचना, मनन ना करने से नुकसान क्या क्या होता है उसके बारे में सोचना, वो भी एक चिंतन है। नवीनता कैसे लाए, चिंतन में, विचारों में, सब बातों में। तो ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ज्ञान योग की सहज धारणा का सहज साधन क्या है। आज बाप दादा ये चेक कर रहे हैं कि बच्चों ने ज्ञान योग को कितना धारण किया है, अर्थात उसी मुरली में पूछा है ज्ञान योग की सहज धारणा करने के लिए सहज साधन क्या है। आज बाप दादा यह चेक कर रहे हैं, तो क्या उत्तर हो सकता है। इस मुरली का उत्तर है आज्ञाकारी बनो, ये छोड़कर बताओ। ये तो इस मुरली का है, ज्ञान योग को धारण करने की सहज रीति से धारण करने का सहज साधन कौन सा है। एक तो है मनन चिंतन करना, जितना ज्ञान योग का मनन चिंतन करेंगे वो धारण होते जाएगा। एक दूसरा नहीं, थोड़ा दूसरा बताओ। हाँ, ज्ञान सुनाना, दूसरों को ज्ञान सुनाना, इससे धारणा खुद होती रहेगी। हम जितना सुनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो धारणाएं हमें होती जाएगी। लगन हो तो, और साधन, साधन बताओ कौन सा साधन। उसमें स्थित होने का अभ्यास करना, कोई भी एक पॉइंट लेना और उसके पॉइंट स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना। अलग अलग तरीके से
ड्राइंग करते हैं
तो। हाँ, एक विधि ये भी है, जैसे निखिलेश भाई फटाफट चित्र बना लेते, वो पिक्चर चित्र बना लेते, जो भी टेक्स्ट है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पिक्चर होता है वो याद रहता है, टेक्स्ट तो भूल जाता है, टेक्स्ट क्या था वो भूल जाता है, परंतु पिक्चर हमेशा याद रहेगा। जैसे होली हंस पे मुरली, होली हंस का चित्र पूरे ही हमने देखा है, विदेशी भाई बहने जब मुरली लिखने बैठते हैं तो एक बड़ा चार्ट लेके आते, पूरा मुरली ड्राइंग कर देते, उसमें अलग अलग चित्र, अलग अलग पेन पेंसिल चित्र ही कन्वर्ट कर देते मुरली को। टेक्स्ट को पिक्चर में कन्वर्ट करना एक विधि है मेमोराइजेशन की। कोई भी चीज को हम याद तब रख सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट याद नहीं रहता है, उसको पिक्चर में कन्वर्ट करना होता है। मेमोरी ट्रेनिंग का एक प्रिंसिपल है रेडिकुलस थिंकिंग और विजुअलाइजेशन और रिपीटेशन, ये 3 मेथड होती है, तो उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देना। तो ये भी एक है कि जिसकी हमें धारणा करनी है उसका पिक्चर बनाना, कि मैं जैसे वो हूं, ये भी एक पिक्चर है। जैसे क्रोध से हमें मुक्त होना है, हम अपना एक पिक्चर बनाएं कि मैं क्रोध से मुक्त हो चुका हूं, और रोज फिर उसको देखना, उसमें रंग भरना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल में आते जाएगा। और ज्ञान योग की सहज धारणा का साधन क्या है, ऐसा क्या करें कि जो ये ज्ञान धारण हो जाए, हमें
खुशी-खुशी स्वीकार कर लेना,
इसे एक्सेप्ट करना, मन को स्वीकार कराना। बाबा जो कहते हैं उसे मन को स्वीकार कराना। बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट्स है जो हमारे अंतर मन ने स्वीकार नहीं की है, बहुत सारी पॉइंट्स अब भी है। तो एक स्टेप है पॉइंट को उठाना, मन के सामने रखना और उसे स्वीकार कराना। हे मन सुन, अपने ही मन से बात करना, अपने आप से बात करना। तो पॉइंट को स्वीकार कराना, जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ये सुना तो सबने है, शायद भाषण भी किए होंगे इसके ऊपर बड़े बड़े, परंतु क्या ये पॉइंट हमारे मन ने स्वीकार किया है? अंतर्मन ने, क्या वही विश्व कल्याण का भाव हमारे अंदर है कि जहां भी जाऊं, जो भी आत्मा दिखे, हमारे मन में यह संकल्प जागता है कि इसका कल्याण हो जाए? फिर वो आत्मा हो सकती है जो हमें सता रही है, दुख दे रही है, अपमान कर रही है, निंदा कर रही है, ग्लानी कर रही है, विघ्न डाल रही है? शायद नहीं। इसके लिए मन को, पॉइंट को स्वीकार कराना ज्ञान को। और नहीं नहीं सहज साधन क्या है, ये उन आत्माओं का चल रहा है जो ऑलरेडी, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान योग की धारणा हो जाए। ज्ञान पता है परंतु धारणा में नहीं है। बार बार चित्र ऐसे रखे कि जो हम देखे, पॉइंट्स कमरे में चिपकाए जाए जहां हम देखे उनको, उसमें थोड़े पावरफुल पॉइंट हो, हे योगी क्या करने आए थे, कर क्या रहे हो, कितना पावरफुल पॉइंट है, हे योगी क्या करने आए थे, कर क्या रहे हो, मधुबन में किस लिए आए थे, क्या व्यर्थ संकल्प करने आए थे, क्या यहाँ आकर माया में फंसने आए थे, सेंटर पर किस लिए आए थे, याद करो वो पहला दिन जब पहली बार सेंटर पर आए थे, क्या करने आए थे, मधुबन में किस लिए आए थे, दो तीन दिन पहले मुरलियों में था ना, केवल रोटी बनाने आए हो क्या यहाँ, माताओं को बाबा ने कहा ना तीन दिन पहले मुरलियों में, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, किस लिए आए थे? आए थे तो लक्ष्य था तपस्या करनी है, आए थे तो लक्ष्य था महान योगी बनना है, क्या बन गए, क्या अब भी वही भोग और अब भी वही विलासिता का जीवन, अब भी वही वासनाएं मन को आंदोलित कर रही है, किस लक्ष्य से आए थे जब आए थे तब? लक्ष्य था बहुत महान तपस्वी बनना, क्या वैसी तपस्या की पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 20 साल में? आए थे तो लक्ष्य था कि स्पिरिचुअल पावर्स आत्मा में भरनी है, आत्मा में शक्तियां भरनी है, भरी या इधर उधर करने में ही, ये वो करने में लग गए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास ने लिखा है ये जो मैं रामचरितमानस लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, मेरे स्वयं के सुख के लिए। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख जब पाती है तब वो खुश होती है। आज की मुरली में वाक्य है एक, कितना अतीन्द्रिय सुख को मैंने पाया, ये स्वयं को पूछना है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात डिक्शनरी परिभाषा देती है, वह सुख जो देह की सहायता के बगैर पाया जाता है, वह मैंने कितना पाया, उस अशरीरी अवस्था का कितना अनुभव किया, उस अतीन्द्रिय सुख को कितना पाया, उन परमात्मा प्रेम का कितना अनुभव किया, उस मौन का कितना अनुभव किया, या वाचा का ये जीवन, वाचा की ये सेवा में कहीं हम खो गए, जिसकी सेवा कर रहे उसी को भूले हुए हैं, क्या ये अवस्था तो नहीं है हमारी? स्वयं स्वयं को देखना। तो क्या करना है, कमरे में अच्छे अच्छे स्लोगन स्वयं स्वयं के लिए लगा के रखने हैं। और दूसरा है ज्ञान योग की सहज धारणा के लिए हमारा जो अध्ययन है उसे बढ़ाना पड़ेगा। केवल मुरली पढ़ लेना, उसमें तो कम से कम 20 टॉपिक्स होती है एक मुरली में, और एक टॉपिक कब खत्म होता है और दूसरा कब चालू होता है ये पता भी नहीं चलता है। साकार मुरली में, अव्यक्त वाणी में तो भी पता चल जाएगा कि ये टॉपिक अभी पूरा हुआ है, अभी दूसरा चालू हो रहा है, पर साकार में कंटिन्यूअस स्पीच होता है, वो कंटिन्यूअस स्पीच जैसे वो बच्चों को कंटिन्यूस स्पीच दिया जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, कंटिन्यूस स्पीच अर्थात भारत महान देश है, देश बहुत सारे हैं, बहुत बहुवचन शब्द है, शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब जहां से एक शब्द छूटा वहां से नया वाक्य चालू होता है। जैसे मुरलियों में आता है तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है, तो उसके बाद में आता है तुम्हें सेवा भी करनी है, पर तुम्हें दिव्य गुण भी धारण करना है। एक पॉइंट खत्म कब हो रहा है, चालू कब हो रहा है, और दूसरा उसके ऊपर ओवरलैप होते होते जब मुरली पूरी होती है तो केवल इतना हम कहते हैं कि मुरली बहुत अच्छी थी, बस उतना ही हमारे हाथ में है। परंतु क्या था, क्योंकि ओवरलैपिंग इतना सारा है, एक पॉइंट अभी पूरी नहीं हुई तो दूसरी, भारत अब कंगाल बन गया है, भारत अब तुम्हें अभी साहूकार बनना है, बाप आए हैं तुम्हें साहूकार बनाने, पर अभी तुम पतित हो, पतित पावन बाप आए, परंतु केवल तुम जानते हो पतित दुनिया क्या है और पावन दुनिया क्या है, दुनिया वाले ये नहीं जानते, मतलब कहाँ क्या याद रखेंगे इसमें से, कौन सा टॉपिक है, और तुरंत फिर वहां से टॉपिक चेंज। तो साकार मुरलिया जो है, वास्तव में अगर देखा जाए तो साकार मुरलियों का एक्सप्लेनेशन है अव्यक्तवाणी, उतनी गहराई उसमें है कि उसका जो विश्लेषण, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन, वो अव्यक्तवाणी है। इसलिए अध्ययन को बढ़ाना है, अध्ययन में आएगा अव्यक्तवाणी, एक अध्ययन में आएगा दादियों के अनुभव, अध्ययन में आएगा, उस दिन क्लास में दादी कह रही थी ना पूर्वजों का चित्र बड़ा बनाओ, क्या हमने जितने दादियां हमारे पूर्वज है सबके अनुभव पढ़े हैं, स्टडी का एक क्षेत्र वो भी है, यज्ञ का इतिहास का अध्ययन करना, यज्ञ का इतिहास क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, सारा अध्ययन करना, इतिहास का, दादियों के जीवन का अध्ययन करना, फिर ज्ञान योग की जो किताबें हैं उनका, अव्यक्त वाणियों का, साकार वाणियों का मैगजीन, मैगजीन्स में बहुत सारे अनुभव आते हैं, ज्ञानामृत और बाकी सभी मैगजीन्स। तो अध्ययन, अध्ययन करेंगे तो बुद्धि थोड़ी बिजी रहेगी और फिर धारणा होगी। और भी कुछ कर सकते हैं धारणा के लिए,
इंटरेस्ट और क्या,
इंटरेस्ट बढ़ाना है, वही जैसे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। हाँ, वो जो बोल दिया चर्चा करना ज्ञान की, और
डेटा कंपाइल करने,
हाँ, जैसे हमारे महेश भाई जी, उन्होंने जो भी किताबें लिखी है, एक बार दादी प्रकाशमणि ने जब कहा था कि पॉइंट्स कौन कौन लिखते हैं इस तरह से एक एक पॉइंट का, तब से उन्होंने करना वो चालू किया कि अलग अलग टॉपिक्स बना के रख दिए कंप्यूटर में, श्रीमद या अलग अलग इस तरह के, और जो जो साकार मुरली आती थी उसका एक एक पॉइंट एक एक इसमें डालते गए, और इतने सालों के बाद अब वो सब किताबें बन गई, 20-25 किताबें अलग अलग टॉपिक्स की, मधुबन मुरली मधुसूदन एक किताब का नाम ऐसा है, तो उसमें जो रोज की जो मुरली है रोज सुबह जाके टाइप करते थे और उधर उधर डाल देते थे अलग अलग हेडिंग्स में। तो हम भी, हमारे पास, हमारी जो कमजोरी है, यदि क्रोध नहीं छूट रहा है, यदि काम अभी तक भी बीच बीच में आते रहता है, तो मुरली से, रोज की मुरली से जो जो उस टॉपिक्स पर जो पॉइंट्स आती है वो वहां से टाइप करे, या तो लिखे और उसमें डालते जाए, या फिर डायरी के अलग अलग पार्ट्स कर ले, इतना पार्ट इसके लिए, इतना इतने पेज इसके लिए, जब जब वो पॉइंट आएगी उसमें लिखते जाना, ताकि वो कंपाइल हो जाए। एक है कि कंपाइल किया हुआ पहले से मिल जाए, उसका इतना महत्व नहीं है, वो किसी और का चिंतन है, हमारा थोड़ी है, जब हम खुद चिंतन करते और खुद लिखते हैं उसका एक बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये भी एक विधि है धारणा आने की। और जिन्होंने धारणा की है, जिनके जीवन में धारणा स्वतः ही है, अब जिनका अमृत वेला होता ही नहीं है, कभी मिस होता है, कभी लेट होता है, कभी नींद में जाता है, वो उन आत्माओं को ढूंढे जो संपूर्ण जागरण की अवस्था में रहते हैं और जिनका कभी पिछले 5 साल में कभी मिस नहीं हुआ है। अगर ऐसी आत्माओं का संग मिल जाए तो वो करंट विल फ्लो, उनका करंट इधर फ्लो होना चालू करेगा। जिनकी पवित्रता भंग होती है वो उन आत्माओं का संग करे जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, अखंड ब्रह्मचर्य, अनब्रोकन सेलिबसी जिनकी है, जो बाल ब्रह्मचारी है, जिन्हें कभी अपवित्रता का संकल्प भी नहीं आया, जिनकी दृष्टि संपूर्ण पवित्र है, जिनकी नजर कभी भी चलायमान नहीं हुई, कहीं डूबी नहीं है, ऐसे जो अनटच्ड है, जिनकी देह को किसी ने स्पर्श नहीं किया और उन्होंने किसी और की देह को कभी स्पर्श नहीं किया, ऐसी जो अनटच्ड आत्माएं हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, ऐसी आत्माओं का संग करे तो उनकी प्योरिटी बहने लगेगी, स्वतः ही पावर भरेगी। कितने ही किताबें पढ़ लो ब्रह्मचर्य की, आत्मा में शक्ति इतनी नहीं भरती जितना उन आत्माओं का संग करने से जो जिनमें ब्रह्मचर्य स्वतः ही है। हो सकता है उनके पूर्व जन्म के आधार के बाद पूर्व जन्म की पवित्रता इस जन्म में बह रही है। तो ऐसी आत्माओं का संग करना जिनमें वो धारणा पहले से है। अगर हमारा अमृत वेला नहीं होता तो उन आत्माओं का संग करना जो अमृत वेला करते हैं, यदि हमारा चिंतन नहीं होता तो उन आत्माओं का संग करना जो रोज चिंतन करते हैं, यदि हम में बहुत क्रोध है उन आत्माओं का संग करना जिनको हमने कभी क्रोधी देखा ही नहीं, यदि हमारा ब्रह्मचर्य बार बार खंडित होता है उन आत्माओं का संग करना कि जिनके संकल्प में प्यूरिटी है, जिनके बोल में ही प्यूरिटी के वाइब्रेशन आते हैं। वो बोल शक्तिशाली इसलिए नहीं है क्योंकि पांडित्य है, शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वहां पर बल है पवित्रता का। इसके लिए वो बोल साधारण बोल नहीं है, सीधा जाकर दिलों को भेदते हैं। कहां से आई है ये पावर? ये पावर अध्ययन से नहीं, ये प्यूरिटी की पावर है। ऐसी आत्माओं का संग करना, और यज्ञ में हमारी दादियां जो वरिष्ठ भाई बहने हैं, बहुत सारे मधुबन निवासी हैं, हमारी सेंटर की बहने हैं, इनके संपर्क में रहना, ये विधि है उन धारणाओं को अपने जीवन में लाने की। अगला प्रश्न, बाप टीचर और सदगुरु के रूप में आज्ञाकारी कैसे बने? मुरली आगे बढ़ रही है जिसमें बाबा ने कहा है ज्ञान योग की सहज धारणा को बाबा चेक कर रहे हैं। ज्ञान योग की सहज धारणा करने का साधन है आज्ञाकारी बनना। बाबा पूछते हैं कि बाप के संबंध में, टीचर के संबंध में, सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी कैसे बने? ये इसका उत्तर मुरली में नहीं है परंतु ये प्रश्न निकाला गया है। तो सबसे पहला है बाप के संबंध में आज्ञाकारी कैसे? अशोक भाई, बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए। और आज्ञाकारी, आज्ञाकारी के लिए दूसरा शब्द है कहना मानना। बहुत अच्छा शब्द है कहना मानना, पावर है शब्द में। उन्होंने जो कहा वो उनका कहना मानना। आज्ञाकारी बनना को समझने पहले अवज्ञाकारी कौन है वो समझना ज्यादा आवश्यक है। डिसोबीडियंस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओबीडियंस को समझने से। डिसोबीडियंट अर्थात अवज्ञा करता है जो, वो कैसे होते हैं? नहीं, अवज्ञा करने वाले लोग कैसे होते हैं? डिसोबीडियंट जो है, जो कहा जाता है वो कुछ और ही कर देता है। श्रीमत को नहीं, संसार में जो डिसोबीडियंट है उनके बारे में बताओ, वो लोग कैसे होते हैं जो अब आज्ञा नहीं मानते? नहीं, वो कैसे होते हैं? दूसरों को अच्छे नहीं लगते। और उनका उनका अपना कैसा है?
बोलेंगे ना कि मेरे को सब पता है यार,
मुझे सब पता है। ये एक पहला भाव कि मुझे सब पता है। हु आर यू, कौन हो आप जो मुझे समझा रहे हो, मुझे बता रहे हो मुझे सब पता है क्या श्रीमत है, क्या है क्या नहीं? ज्ञान योग में अगर कहे तो ये जो भाव है, मैं सब कुछ जानता हूं। ज्ञानी की निशानी है मैं कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी की निशानी क्या है? संपूर्ण मुझे कुछ भी पता नहीं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। सुकरात के जीवन का उधर भी क्लास में बताया था कभी, सोक्रेटिस वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब ये समझता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में कि मुझे जानना बाकी है। थोड़ा सा जब बड़ा होता है तब पता चलता है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो मुझे पता नहीं है। और जब बूढ़ा होता है और वो डेल्फी कि जो देवता आपकी वहां पर घोषणा होती है, आकाशवाणी होती है कि इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी सुकरात है, और लोग उसके पास आके कहते हैं कि सुकरात डेल्फी में घोषणा हुई है, ओरेकल ऑफ डेल्फी ने कहा है कि तुम ही सबसे बड़ा ज्ञानी हो, वो कहता है ये एकदम झूठा है, क्योंकि अब मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। ये जो भाव है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, सितारों के आगे जहां और भी है, तो हमने अभी कुछ भी नहीं जाना है। ये मुरली जो है बस अभी बस इसकी ए बी सी डी, वहां से अभी इसको समझना है क्या है, कुछ भी नहीं जाना है, आज से समझना है ये भाव। तो डिसोबीडियंट जो होंगे, अवज्ञाकारी जो होंगे, वो क्या कहते हैं, समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, और अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते दूसरों को, और जो जो उसको सिखा रहा है उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मानना तो तब होगा जब हम समझे वो क्या कह रहा है सामने वाला, सुनने को ही तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है। यही भाव है कि मैं राइट हूं, ऐसा व्यक्ति कब किसकी मानेगा। दूसरी दफा बोले तो गुस्सा, तीसरी दफा बोले तो झगड़ा। और तो ये अवज्ञाकारी है, ये उस आत्मा की निशानी। तो आज्ञाकारी कैसा होना चाहिए, नम्रता। अभी चिंतन का विषय है आज्ञाकारी बनने के लिए किन धारणाओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहला है नम्रता, दूसरा है जिस रिस्पेक्ट, जो कह रहा है उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, सम्मान। तीसरा, जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनना, तभी तो हम मान सकेंगे, सुना ही नहीं ध्यान से तो कैसे मानेंगे। फिर उसको समझना, यदि उससे मतभेद है तो उससे थोड़ी डिस्कस करना, पूछना कि ऐसा ऐसा है क्या किया जाए, और आज्ञाकारी बनने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है बहनों की तरफ से। गुड लिसनर होना चाहिए। हाँ जी, लास्ट संडे की मुरली, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, जी बाबा, हम तैयार हैं बाबा। आज बाप दादा, हजार आज दारी बाप, किसको देख रहे हैं, सदा सहयोगी आत्माओं को, विशेष आत्माओं को, राइट हैंड आत्माओं को, ऐसी आत्माओं को देख रहे हैं जो कि सदा तत्पर है, ऑल एवर रेडी है, हर सेवा करने के लिए एवर रेडी है, ऐसी आत्माओं को बाप दादा देख रहे हैं। तो आज्ञाकारी बनने के लिए नम्रता, गुड लिसनर, जो कह रहा है उसके प्रति सम्मान आदर, और एक दूसरा एक विषय है इसमें कि आज्ञाकारी की यह भी निशानी है कि जो आज्ञा दी है उसे टाइम पर पूरा करना। ऐसा नहीं है कि कहा है तो बस, हाँ मतलब लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो व्यक्ति, वो भी एक गुण है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो टाइम दिया है उसके अंदर उसे पूरा करना। दो दिन में पूरा करने को कहा है और हम कर रहे हैं 10 दिन के बाद, तो क्या इसे आज्ञाकारी कहेंगे? तो इसको भी आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तो ये एक बात है। तो यहां बाबा कह रहे हैं बाप के रूप में आज्ञाकारी, अर्थात जो श्रीमत मिली है उस पर चलना। उसके लिए श्रीमत क्या है पहले वो तो पता करना पड़ेगा। इस मुरली में बाबा ने आगे कहा है कि उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, सोने के लिए बाप दादा ने श्रीमत दे रखी है। कर्म में क्या श्रीमत है वो भी बता रखी है। अमृत वेले से रात तक क्या श्रीमत है, अमृत वेले उठते ये संकल्प करो मैं कौन, अमृत वेले उठते ये संकल्प करो मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं, ये समान है मुरली का। तो उसके लिए सबसे पहले तो श्रीमत क्या है, उठने के लिए श्रीमत क्या है, बैठने के लिए श्रीमत क्या है, खाने के लिए श्रीमत क्या है, सोने के लिए श्रीमत क्या है, देखने के लिए श्रीमत क्या है, सुनने के लिए श्रीमत क्या है, बोलने के लिए श्रीमत क्या है, टच किसे करना है उसके लिए श्रीमत क्या है, दिनचर्या के लिए श्रीमत क्या है, संबंध संपर्क के लिए श्रीमत क्या है, सेवा के लिए श्रीमत क्या है, धारणा के लिए श्रीमत क्या है, योग के लिए श्रीमत क्या है, ज्ञान के लिए श्रीमत क्या है, हर चीज के लिए श्रीमत क्या है, इसका चिंतन करना। क्या हमें पता है? महेश भाई ने एक किताब लिखी है श्रीमत कंपाइलेशन, जो कहा अभी स्पार्क में वो अवेलेबल है, जिसमें हर चीज के बारे में विस्तार किया है, क्या कपड़े पहनने हैं, उसके लिए बाबा के अव्यक्त और साकार मूल्यों के महावाक्यों का संकलन, हर चीज के लिए बड़ी किताब है श्रीमत। तो बाप को की श्रीमत को मानना अर्थात आज्ञाकारी। टीचर का क्या?
होमवर्क जो देते हैं,
टीचर जो होमवर्क देता है उसे करना। लास्ट सीजन में बाबा ने बहुत सारे होमवर्क दिए थे, कल बाबा आ रहा है, कल पूछेंगे किस किस ने किया है। अभी भी टाइम है, एक दिन का फटाफट कर लो। एक दिन में भी कर लिया उस दिन उसी मुरली में, एक 18 जनवरी की मुरली में कहा है बाबा ने, अगर एक दिन भी रेगुलर होता है तो उसे रेगुलर कहा जाएगा। टीचर ऐसी विधि से पढ़ाता है कि जैसे मुरली छपाई हो जाती है। टीचर को इतना नशा है। तो अगर बच्चे पढ़ाई न पढ़े ये शोभता है क्या? तो पढ़ाई में इंटरेस्ट, पढ़ाई का शौक, पढ़ाई में रुचि। तो टीचर को कौन से विद्यार्थी पसंद है? जो एक्यूरेट है। जैसे जैसे हमारे कुमुद बहन
टीचर की है जो शिक्षाएं मिली दिव्य गुण स्वरूप पर। सद्गुरु की आज्ञा है श्रीमत और वरदान। श्रीमत भी देता, वरदान भी देता, फॉलो 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 करो।
तो सद्गुरु है वरदान, और सदगुरु के लिए बाबा एक दूसरी चीज कहते हैं तैयारी जाने की। क्योंकि सदगुरु किस लिए आया है? वापस जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं? इसकी तैयारी हो गई है अभी अभी। अगर यहाँ पर राइट नाउ अभी अभी भगवान यहाँ आके खड़ा हो जाए और कहे कि चलो मैं लेने आया हूँ, क्या कहेंगे? कौन कौन कहेगा कि हम तैयार है? और कौन कौन कहेगा कि हमें थोड़ा सेंटर पे जाके आना है, ये जिज्ञासु, ये विद्यार्थी कल आने वाला है, मेगा प्रोग्राम है, ये है, वो है, वो है, ऐसा है। बस अभी कहा और चले, तैयार है, कुछ नहीं पीछे का।
फिर बाबा बोले तो मुझे विदाई देना
चाहते वो यहाँ नहीं बोलेगा बाबा इतनी क्या हमारी तैयारी है, कुछ भी याद नहीं। कहा चलो, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम है, पूछो नहीं क्या क्यों कैसे कब कहां। आज के वरदान में भी है क्या क्यों करते, ये सब फरियाद है। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई, करो और मरो, ये नियम है आर्मी के। तो क्या हम ऐसे तैयार है? सुप्रीम कमांडर आके खड़ा हो जाए और अपनी रूहानी साल्वेशन आर्मी को कहे कम ऑन टेक अप दाई क्रॉस एंड फॉलो मी, चलो मेरे साथ। तो क्या हम तैयार है? क्या कहेंगे कि कुछ कुछ करना है, थोड़ा मोबाइल बहुत सारा डिलीट करना बाकी है, ईमेल का अकाउंट क्लोज करना बाकी है, कोई देख ना ले मोबाइल ही नहीं है इधर, ईमेल भी नहीं है तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी है तो सद्गुरु जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करना, टीचर जो शिक्षाएं दे उनका स्वरूप बनना, बाप जो कहे वो कर देना। शास्त्रों में उदाहरण है गुरु का, धौम्य ऋषि है शायद, उपनिषदों में उदाहरण है अरुणी का, अरुणी उसका जो शिष्य होता है वो गुरु का, अपने शिष्य को एक बार कहता है कि जाओ बारिश थोड़ी हो रही है कि उनके जो खेत होते हैं वहां पे नाले है, वहां का पानी आ जाएगा तो उन पानी को थोड़ा रोक दो। वो अरुणी जाता है और देखता है कि बारिश तो तेज हो रही है, बहुत सारा प्रयत्न करता है परंतु फिर भी पानी बार बार नाले से बाहर इधर खेत की ओर आता है। जब सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है तो वो वहां लेट जाता है, फिर वो लेटा रहता है। धौम्य ऋषि और अरुणी, जिसको बाद में उद्वलक कहा गया है उसका नाम, तो वो लेटा रहता है वहां पर। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो फिर धौम्य ऋषि जो है वो बहुत परेशान होते हैं, क्यों नहीं आया अभी तक, उसको ढूंढने निकलते हैं, वो यहाँ ढूंढते हैं, वहां ढूंढते हैं, जोर जोर से आवाज लगाते हैं, फिर भी दिखता नहीं। फिर वो उठकर नहीं आता है, वहीं लेटे लेटे ही चिल्लाता है कि गुरु जी मैं यहाँ हूँ। और जब वो धौम्य ऋषि आकर देखते हैं उसको वहां की वो लेटा हुआ है, तो उनको जैसे कि आंसू आ जाते हैं कि इतनी आज्ञाकारी था, और दिखाया है उपनिषदों में कि उसको वरदान दे दिया दिव्य बुद्धि का, बिना कुछ किए तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कंठ हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में धारण हो जाएगा। उसी को बाद में उद्वलक कहा है, जिसके ऊपर उपनिषदों में बहुत सारी बातें लिखी है। आज्ञा का पालन किया और वरदान मिला। जगदीश भाई का भी यज्ञ में बहुत बड़ा उदाहरण है, आज्ञा का पालन किया और वरदान मिला। आज्ञा का पालन करना, ऐसे सूफियों में भी एक कहानी है, द ग्रेटेस्ट स्टोरीज ऑफ सूफीज जिसको कहते हैं, सूफियों की सर्वोत्तम कहानी। मौजूद नाम का एक व्यक्ति है जो काफी प्रसिद्ध है सूफियों में। उसके जीवन में दिखाया है कि वो एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति होता है, अचानक एक दिन सूफियों के जो परम गुरु है जिसको खिर्द कहते हैं, वो हरे वेश धारण करके उसके सामने प्रकट होते हैं खिर्द, और वो खिर्द उससे कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है, 3 दिन के बाद मुझे नदी के किनारे पर मिल। और वो मौजूद जाता है नदी के किनारे पर आधी रात को, और खिर्द वहां पर फिर से प्रकट होता है, कहते हैं कूद जा नीचे, उस जो नदी बहती रहती है उसमें उफान पर है नदी, बाढ़ आया हुआ है, वो कपड़े निकाल के कूद जाता है उसमें, और फिर बहते 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 किनारे पर पहुंचता है। वहां उसे एक मछुआ मिलता है, फिशरमैन, वो उसको बचाता है और दोनों की दोस्ती होती है। वहां कुछ समय रहता है और वो खुद एक मछुआ बन जाता है और वहीं रहने लगता है। फिर धीरे धीरे एक दिन वो खिर्द जो है उसका गुरु फिर से प्रकट होता है, कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है, उठ यहाँ से और सब कुछ छोड़ दे, अब जो भी यहाँ पे तुमने कमाया है, यहाँ पे तुमने जो घर बसाया है, इसको छोड़ दे और चल आगे, वो उस गांव में जा, मुकुल एक गांव बताया है, वहां जाने को कहता है। वहां जाता है, वो जाते जाते किसान मिलता है, किसान उसको कहता है कि मेरे साथ हो जा, तो वो किसान के साथ जाता है, किसान बन जाता है, किसान के साथ 2-3 साल रहता है, और फिर एक दिन वो खिर्द फिर से आ जाता है, कहता है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो यहाँ पे आगे बढ़ो, और उसको आगे बढ़ने को कहता है। आगे फिर जाता है, वहां पर एक व्यापारी बन जाता है, फिर उसको वो प्रकट होता है, फिर कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से निकलो और जाओ समरकंड गांव है एक, वहां जाओ, वहां पर वो पंसारी बन जाता है। ये सारा करते 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 ये जो व्यक्ति है मौजूद, उसमें अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगती है, उसके हाथों में शफा आने लगती है। जिस जिसको वो देखता है वो बीमार को ठीक करने लगता है, जिस जिसको वो जो जो कहता है वो ठीक करने लगता है, उसमें दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती है। उसको लोग कहते हैं कि तुमने ये दिव्य शक्तियां कैसे प्रकट, तुमने किया क्या, वो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं तुमने अपने जीवन की कहानी लिखो, वो लिखता है मेरे जीवन की कहानी बहुत ही सिंपल है, मैं सबसे पहले एक छोटा सा काम करने वाला था, मैंने छलांग लगाई इसमें नदी में, तो मैं मछुआ बना, वो छोड़ के गया तो मैं व्यापारी बना, वो छोड़ के गया तो फिर मैं पंसारी बना, वो छोड़ के गया तो मैं यहाँ हूँ, बस यही मेरे जीवन की कहानी है। वो कहता है इट डजंट एक्सप्लेन एनीथिंग, तुम इतने महान बने कैसे। वो कहता है बस यही किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। आज्ञाकारिता सूफियों में बहुत सुनाते हैं ये कहानी। तो केवल आज्ञा मानना, हाँ कह देना, तो दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती है। यस माय लॉर्ड, पॉजिटिव एनर्जी है यस शब्द में ही। आज्ञा के प्रमाण चलने से क्या क्या हो जाएगा, इस मुरली में बाबा ने कहा अगर आज्ञा प्रमाण चलते हो तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगी, आज्ञा प्रमाण चलते हो तुम्हें सोचने की दरकार नहीं, आज्ञा प्रमाण चलते हो तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा राइट है कि रॉन्ग है, सहज पुरुषार्थ हो जाएगा आज्ञा प्रमाण चलते है तो। और भी बहुत सारी चीजें हो जाएगी, आज्ञा प्रमाण चलते है तो हल्के रहेंगे, आज्ञा प्रमाण चलते है तो क्या वो तो एक ये भी उदाहरण दो, अंडे वाला उदाहरण भी दिखते है ना मम्मा के लिए। दूसरा, मनसा वैसा कर्मनार के लिए कौन सी आज्ञा स्पष्ट है, मनसा में कौन से संकल्प लाए। इस मुरली में कहा है पॉजिटिव शुभ संकल्प करो, वाचा में मुरली में विस्तार तो नहीं है परंतु इसकी हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हमारी वाणी कैसे हो। फिर उसके बाद कर्मना, 2-3 दिन पहले ही बहुत बड़ा क्लास उसके ऊपर हुआ, कर्म श्रेष्ठ कैसे हो। तो इन तीनों ही चीजें के लिए कौन सी आज्ञा है, कर्मना के लिए आज्ञा, वाचा के लिए आज्ञा, मनसा के लिए आज्ञा। एक महावाक्य मुरली में आया है परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। चिंतन का विषय है क्यों क्यों श्रेष्ठ है परमात्मा आज्ञा, क्योंकि उसी में कल्याण है, बाकी सब में अकल्याण है, बाकी सब भटकाने वाले हैं, उतरती कला वाले हैं, और बाकी सब में कंफ्यूजन है बहुत। ये परमात्मा आज्ञा एकदम क्लियर है, इस मार्ग में कोई भटकना नहीं है, राम इंटरनेशनल हाईवे, बाकी जो है ना छोटे छोटे गलियां उसमें बहुत भटकना है।
इसके लिए तो
वो तो बाकी करते ही रहे इतने जन्म, बहुत भटकाया सबने, परंतु इसके लिए परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। अभी मुरली का दूसरा प्रश्न है, बाप से हमने कौन से वायदे किए हैं? आज की मुरली में एक भी एक वायदा है, कौन सा? साकार मुरली साकार, ये इसमें तो है, ये दूसरा, ये कल का है, आज की साकार मुरली में एक वायदा है, ममत्व मिटा देंगे, है ना, तुम मिल गए तो मन का वायदा, तन का वायदा, धन का वायदा, जन का वायदा, ये चार वायदे कल के इसमें है, तन मन धन जन। चालू करेंगे जन से। जन का वायदा में बाबा ने संबंध को जोड़ा है, सारे संबंध एक बाप से, सर्व संबंधों की अनुभूति एक से, ये कहा है जन के लिए। धन के लिए धन का वायदा कौन सा है? कुमारों से बाबा बात कह रहे, कुमारों को बाबा ने कहा है धन का पोता मेल रखना सीखो, कहां कैसे धन को लगाना है, कितना लगाना है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है। फिर दादियों के लिए भी कहा, दादियां धारणा की क्लास कराती है, जो लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है उनको सिखाओ धन को कैसे कार्य में लगाना। लास्ट संडे की मुरली धन के विषय में क्या था पॉइंट? 75% फर्स्ट कैटेगरी वाले 75% इस अलौकिक कार्य में लगाते हैं, बाकी जो है वो निमित्त मात्र अपने कार्य में लगाते हैं, वो अनासक्त रहते हैं, साधारण रहना, साधारण खाना, साधारण चलना, प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, और लौकिक वृत्ति, लौकिक संबंध, लौकिक कार्य करते हुए भी अलौक फुल, जैसे कि 75% वही पॉइंट वापस यहाँ पर है, 75% इसमें लगाते हैं, फ्राक दिल रहते हैं, विशाल दिल होते हैं, इसके लिए लौकिक वालों को भी नाराज नहीं करते, बहुत सारी चीजें, वो उधर हाफ पार्टनर है, परंतु इधर बाप से सौदा करने में फुल पार्टनर। तो ये धन के लिए बाबा ने कहा था, यहाँ पर भी बाबा थोड़ा विस्तार कर रहे हैं कि धन के लिए धन भी उसका उसी के कार्य में लगे, जो भी हमारे पास धन है, पांच हिस्से करने के लिए कहा था। ये यहाँ पर भी मुरली में यही वाली बात है, अमानत कि ये जो तुमको दिया गया, इसको ये नहीं समझो कि ये मेरा है, ये दिया गया है, ट्रस्टी बनकर इसको, ये भी एक भाव है, ट्रस्टीपन का भाव धन के विषय में। उसमें और एक चीज होती है धन के विषय में, शॉपिंग। शॉपिंग करने के बहुत सारे नियम, कुछ कुछ हमने कभी सुने थे, पढ़े थे कहीं, तो संसार के है, परंतु उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी कि शॉपिंग करने जब निकलते हैं ब्राह्मण, चाहे बहने या भाई, उसमें क्या क्या किया जाए। उसमें लिखा था जितने पैसे, कम ही पैसे लेके जाए, क्योंकि पैसे जब ज्यादा रहते हैं तो जो जो दिखता है वो लेना चालू करते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कभी भी लेके नहीं जाना, क्योंकि उससे पता नहीं चलता है कितने पैसे चले गए। हाथ से जब जाते तब कैश होनी चाहिए, वो डेबिट और क्रेडिट वाले होते हैं ना, दे दिया बस, उसमें कितने जा रहे हो कितने, वो जो है ना मन की जो लालच के जो संस्कार है इतने जन्मों के, वो सारे प्रकट होते हैं शॉपिंग के टाइम पर। तो जितना हम खरीदना नहीं चाहते थे, वहां जाकर बहुत सारी चीजें खरीद के लेके आते। दूध लेने जाते गाय का, तो वो भी है कि थोड़ा उसमें हमें, उस मुरली में जो तीन बातें कही थी बाबा ने, पहली जो आत्मा है वो इकोनॉमी करने वाली है, इकोनॉमी और इकोनॉमी वाली, ऐसा हम कुछ ना करें कि जैसे फालतू ही ले तो ली, खरीद ली वस्तु वैसी रखिए, अनावश्यक वस्तुएं खरीद के रखी है बहुत सारी, चाहिए नहीं हमको, बस खरीद के रखी हुई है, ना ही किसी को देने भी नहीं है, वो देने को भी बहुत मन नहीं करता देने को, वो रहेगी पड़ी रहने दो, पर देंगे नहीं किसी को। तो तन सबसे मुख्य जो पॉइंट इस मुरली का है वो है मन का, ये तो बहुत ज्यादा चिंतन करने का विषय है। हम खुद कहेंगे कि हमें भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बाबा ने कहा है इस मुरली में, कहा है बाबा ने मन को अमानत समझो, मन को अमानत समझो। ये क्यों कहते हो ये मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है, तीन प्रश्न कहे, ये युद्ध क्यों, ये समझो कि ये मन मेरा नहीं है, ये बाबा ने दिया है तुमको, ये उसका है, हमारा नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़ी साधना है। कैसे समझे इसको कि ये जो मन है, मन अर्थात संकल्प चल ही रहे उसमें, ये वस्तु है जैसे दी है हमें, और ये उसकी है अमानत। हम यदि समझ रही है मेरा मन है, बाबा ने कहा यह अमानत में ख्यानत है, उसमें फिर दो दरवाजे बताए माया के, मैं और मेरा, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा। परंतु ये जो बात है मन को जैसे वस्तु कहा है, ये तुम्हारी है ही नहीं, ये तुम्हें दी गई है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि बाबा ने जो कहा है ये मैं और मेरा को बाबा ने बहुत बार कहा है परिवर्तन करो, वो देहभान वाला जो है उसको मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसमें परिवर्तन करो। पर ये भी एक बहुत बड़ी साधना है कि हर बार वो कैसे हो, वो देहभान ना आए, जैसे वो एक वस्तु है उसकी हमें दी गई है। जैसे ये विचार, फिर उसमें व्यर्थ कैसे आ सकता है? अगर व्यर्थ आता है तो क्या इसे आज्ञाकारी कहेंगे? या सदा आज्ञाकारी हो, या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञाकारी से किनारा कर देते हो, वो प्रैक्टिकल में आए। तो ये एक साधना है, इसके विषय में हम आगे की दो तीन क्लास में चर्चा करेंगे, अभी समय बाकी भी प्रश्न है। आज्ञाकारी बच्चों की तीन निशानियां क्या है? बाबा खुद उन्हें याद करेगा, एक। दूसरा, बाबा का प्यारा होगा, दो। तीसरा, वो बाप के समीप होगा, और ये छोड़कर वो परिवार का भी प्यारा होगा, क्योंकि आज्ञाकारी जो होते हैं ना वो सबको प्रिय होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं वो। नहीं तो जो हर चीज में उनको अगर कुछ कहा जाए ये करने को, सबसे पहला नो, पहले ही ना मुझे ये आता नहीं, या मैंने कभी ये किया नहीं। ये जो नो है ना, इसमें बहुत जबरदस्त निगेटिव एनर्जी है। हाँ, हो सकता है हमने कभी, हमें याद है बहुत MBBS, हम जब इंटर्न थे तब हमारी फर्स्ट पोस्टिंग थी ऑर्थो में, अभी तक तो खाली MBBS चल रहा था और हमने कभी पेशेंट देखे नहीं थे। तो फर्स्ट पोस्टिंग जो थी ऑर्थो में, एक पेशेंट आधी रात को आया जो कि बहुत बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत ज्यादा सीरियस, और उसको सीटी स्कैन कराने किसी दूसरी जगह लेके जाना था, 4-5 घंटे की वो जर्नी ये थी। तो उसमें मुझे कहा गया तुम जाओगे क्या? अब हमने कभी पेशेंट ही नहीं देखे कोई सीरियस पेशेंट, और उनको मुझे कहा कि तुम जाओ, नागपुर तक जाना था वो पेशेंट को लेकर। तो तुरंत हमने कहा कि हाँ कभी कोई इंजेक्शन पकड़ा नहीं ना, तो कुछ उनके प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, अभी तो खाली लक्ष्य था एग्जाम पास करनी है, बस पढ़ो और एग्जाम पास करो, पढ़ो और एग्जाम पास करो। ये तो अभी इंटर्नशिप जस्ट चालू हुई थी, तो हमको याद है कि हमने हाँ कह दिया, और वो पेशेंट इतना सीरियस था, बहुत ज्यादा सीरियस था, वो वेंटिलेटर ट्यूब वगैरह डली थी, और उसको लेके हम निकल पड़े। वो सब हमको समझाया गया, ये हुआ तो ये देना, वो हुआ तो वो देना, वो हुआ तो वो देना। वो पूरा रात हमने उसका अभाद्य अनुभव भी लिखा था, तो वो जो पूरी रात उसने गई थी, पूरी रात हम बैठे रहे, बीच में ऑक्सीजन फेल हो गया, फिर उतरे, फिर एक हॉस्पिटल में भागे उधर सेवाग्राम में, फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया, फिर वो लाइन आउट हो गई, पूरा पसीना पसीना, उसका पूरा खून कपड़े पर, क्योंकि पूरा खून बाहर फेंक रहा था वो ट्यूब से जो आ रहा था, उसका हेड इंजुरी था। उसको हम पूरा लेके गए, पर पूरा वो वहां पहुंचे, फिर वहां उसने सीटी स्कैन के टेबल पर उसने शरीर छोड़ा। पर हमें बहुत संतुष्टता था कि जो काम हमें दिया गया था यहाँ तक पहुंचाने का लाइव, वो पहुंचा दिया हमने बिल्कुल संकल्प किया कि तब तो हम ज्ञान में नहीं थे, तो हमने किया कि जब तक नहीं पहुंचूंगा छोड़ना नहीं, बिल्कुल आदेश दे दिया था उसको हनुमान तो वो ऐसा था कि जो भी कहा गया है वो कर देना है बस, ना नहीं करना, ये नहीं कहना कि मुझे पता नहीं, मैं मुझे आता नहीं, मैं तो बहुत नया हूं। और सब लोग इतने चिंता हैरान हो गए कि ये कैसे गया, ये तो कभी गया ही नहीं, इंटर्न्स को कभी जाते ही नहीं, हो जो HOs होते हैं, हाउस ऑफिसर्स, वो जाते हैं यूजुअली। ये तो जैसे पहली बार हम गए थे, पर हम गए और उसको लेके गए, तो वो भी जैसे एक यादगार अनुभव हो गया। तो वो पहला ऐसा एक सीरियस पेशेंट, पर हमने ना नहीं कहा, करो तो कर दिया बस। और वो करने में ही जैसे कि वो जो स्किल्स जो डेवलप हुई धीरे धीरे। तो आज्ञाकारी बच्चों की तीन निशानी, समीपता का अनुभव कब होगा? समीपता का अनुभव मुरली से, मुरली में बाबा ने कहा है बाबा से हर रूप में हर संबंध, और एक बाबा दिल से निकले, केवल कहने मात्र नहीं, जैसे भक्ति में कहते हैं राम 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 जटते, आज की मुरली लास्ट लाइन, मम्मा मम्मा कहने से फायदा नहीं होने वाला है कुछ, मम्मा जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो रट लगा के रखा मम्मा मम्मा मम्मा, बाबा बाबा बाबा, नॉट एवरीवन हु कमेट एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डू एट द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं, जीसस क्राइस्ट कहता है, वो केवल आके कहता है कि हे प्रभु, बट ही दैट डू एट द विल ऑफ माय फादर, जो मेरे बाप का मानता है उसने जो कहा है, ही अलोन शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। सब नहीं, मानना पड़ेगा उसका, तो ही आ सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो समीपता का अनुभव कब होगा? तो दिल से निकले, ये दिल का सौदा है, बहुत बार बाबा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन खजानों का महत्व। कौन से तीन खजाने? वास्तव में दो ही खजाने हैं, वो समय, श्वास, संकल्प। समय और श्वास एक ही चीज है। श्वास जो है वो पोएटिक है, समय जो है वो साइंटिफिक है। श्वासोश्वास याद करना मतलब हर समय याद करना। तो समय को सफल करना और संकल्प को सफल करना, समय हमारा वेस्ट ना हो। इस मुरली में बाबा ने कहा, ऐसा नहीं समझो कि एक दिन तो हुआ, बीत गया तो क्या हुआ, पांच मिनट ही तो बीत गया, बहुत गया, क्योंकि ये छोटा सा युग है, जमा करने का युग है। इसके लिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस बैठ गए किसी के साथ और दो घंटे ऐसे चले गए, पता ही नहीं क्या हुआ। बैठ गए टीवी के सामने और देखते देखते इतना कुछ देख लिया कि पता ही नहीं कितना टाइम चला गया। बैठ गए इंटरनेट पे और एक क्लिक दूसरा क्लिक, एक साइट से दूसरा साइट, एक जाल स्थान से दूसरे जाल स्थान में खुद ही जाल में फंस जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी, हमारा टाइम वेस्ट, फाइव मिनट्स भी हमारे वेस्ट ना हो। कुछ ना कुछ मनन चिंतन चलता रहे हमारे मन में। गुप्त योगी बच्चों की निशानियां क्या है? यहाँ पे बाबा बात कर रहे हैं उड़ीसा के चक्रवाती तूफान 1999 सुपर साइक्लोन उड़ीसा, जिसमें कितने सारे लोग मारे गए थे। 10,000 तो सरकारी आंकड़े हैं, परंतु 50,000 तक लोग मारे गए होंगे। हजारों लाखों इमारतें उसमें खत्म हो गई, लाखों जानवर, 25 लाख का आंकड़ा है, जानवर खत्म हो गए, बिजली खत्म हो गई थी, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था। पूरा के पूरा उड़ीसा उस समय अंधकारमय हो गया था। जैसे कि उस समय बाबा को बताया गया, बाबा ये हुआ, बाबा ने कहा ये रियल सेल है, रियल आने वाला है। इस मुरली में बाबा ने कहा है ये रियल सेल है जो बाप और ड्रामा करा रहा है, रियल आने वाला है। उस परिस्थिति में क्या करना है? तो ऐसे जो गुप्त योगी बच्चे हैं उन्हें सहयोग देना है उस अवस्था में। यहाँ पे 6 बातें बाबा ने कही है। योगियों की निशानी में भी वही प्रश्न है, कैसी अवस्था होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है अचल, सबसे पहला पॉइंट है अचल अवस्था होनी चाहिए। ऐसा जब तूफान आएगा, बाबा ने कहा ये रियल नहीं है, रियल सेल है, केवल रियल आएगा, ये तो एक ही तत्व है। उसके बाद में भी वहां दिखा, इतनी बारिश हुई कि फर्स्ट फ्लोर, तो जितनी बिल्डिंग थी सबके फर्स्ट फ्लोर पानी में थे। सुपर साइक्लोन ओडिशा, बालासोर, कौन सा गांव है बालासोर, पारादीप है बालासोर भी है ना, बालासोर सबसे द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, बालासोर, पारादीप, भुवनेश्वर, ये सारे के सारे जैसे कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज थे। पूरा की पूरा पानी उसमें घुस गया था, कितने लोग बेघर हो गए थे उस समय। उस समय बाबा ये मुरली चला रहे है। तो अचल। दूसरा है साक्षी। साक्षी में भी 2 बातें हैं, देखना और सुनना। साक्षी होकर देखना और सुनना, परंतु साक्षी अवस्था हो। तीसरा है निर्भय। निर्भय, निर्भय हमारी स्थिति हो, ये सब देखते हुए भयभीत ना हो जाए। लाशें ही लाशें सब, और जहां देखो वहां लाशें ही लाशें। जैसे वो अनुरिमा सिन्हा जो है, उसके बारे में बताते हैं कि वो जब एवरेस्ट क्लाइम कर रही थी तो वहां पे कैसे बात करते थे जो उनके साथ में शेरपा और वो जो थे, यहां से जाना है एवरेस्ट में, वो कहते थे वहां एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके बाजू से चले जाना, मतलब इसके पहले जिन्होंने ट्राई किया है वो मरे पड़े, इस तरह की भाषा प्रयोग किया है कि वहां पे फिर वो पड़ा हुआ, वो मरा हुआ होगा ना, वो अभी भी पड़ा हुआ है, उसको उठाया नहीं किसी, उसके दाएं से चले जाना, उसके बाएं से चले जाना, मतलब ये देखकर तो पहले ही भाग जाएगा कोई मतलब मेरे से पहले आने वाले लोग मर चुके हैं। तो भाषा इस तरह का प्रयोग है, मतलब निर्भय अवस्था चाहिए तो ही आगे बढ़ सकते हैं। निर्भय। उसके बाद में है सुख, सहयोग देने की भाव, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल तो अनाज और वस्त्र दुनिया वाले भी देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा विशेष कर्तव्य क्या है? शांति, सुख, शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये तुम्हें देना है उन आत्माओं को, शांति देना ऐसे समय पर, ये हमारा कर्तव्य है, सहयोग देना। और लास्ट में है दाता। दाता में भी 2 चीजें चाहिए। कौन सी 2 चीजें? स्टॉक जमा चाहिए और शक्तियों का स्टॉक, और शुभ भावना, शुभकामना का स्टॉक। इतनी ये 6 बातें हैं, किसमें? ऐसी महाप्रलयंकारी महाआपदाएं जब आएगी, महाभूकंप कहो या फिर महा तूफान कहो, तब हमारी स्थिति ऐसी चाहिए। तो यहाँ बाबा ने कहा ऐसे गुप्त योगी जो बच्चे हैं उनकी ये सारी निशानियां होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण आत्मा का विशेष कार्य कौन सा है? तो विशेष ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य शब्द प्रयोग किए बाबा ने, विशेष ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य ये होगा सहयोग देना, सूक्ष्म सहयोग देना आत्माओं को। नेक्स्ट है, मन्मथ श्रीमत परमत में अंतर क्या है? तो मन्मथ परमत क्या करती है, तीन तीन मत को कट करना है, जैसे तीन पर को कट करना है वैसे तीन मत को भी कट करना है और एक मत धारण करनी है। तीन मत कौन कौन से, मन्मथ परमत और जनमत, और एक मत को धारण करना है श्रीमत। तो ये परमत मन्मथ से क्या हो जाता है, भारी बोझ, कंफ्यूजन, उड़ नहीं सकते, असमंजस की अवस्था, करना है नहीं करना है। अच्छा चलो, अभी तो किसी ने कह दिया कि ये करो, हमारे जीवन में समस्या, हम इनके पास गए, उन्होंने कहा ये करो, वो किया और सब गड़बड़ हो गया। अभी वापस जाए तो वो कहते मुझे नहीं पता मुझे भी नहीं पता ये ऐसा होने वाला था। वेस्ट टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ, मनी ट्रेवलिंग, कहीं दूसरे देश में हो, दूसरे गांव में हो तो मिलने जाना। भूले करते रहेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मन्मथ और परमत। परंतु इसका इसका निर्णय कौन करे कि ये मन्मथ है कि श्रीमत है कि परमत है? सारा खेल तो इसी का है, ये मन्मथ है कि श्रीमत है कि परमत है। हम हर श्रीमत को, हर मन्मथ को अपनी सुविधा अनुसार श्रीमत बना देते हैं, श्रीमत के कपड़े पहनाते हैं, बाप को सामने रखना। परंतु ये बहुत सूक्ष्म, ये भी पुरुषार्थ है कि श्रीमत कौन सी है, मन्मथ कौन सी है, परमत कौन सी है। श्रीमत को समझना ही जीवन का पुरुषार्थ है। व्हाट इज श्रीमत, सारा श्रीमत को ही है क्या, करना क्या है, एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस चाहिए। नहीं तो मुरली तो बहुत अच्छी सुन लिया, और मुरली कितनी अलंकारिक है, ज्ञान रत्नों को देखते ये वो पूरी मुरली पढ़ ली, अब करना क्या है, हाथ में कुछ भी नहीं, मुरली पर चर्चा भी कर ली, यहाँ बैठ लिया, सब किया, यहाँ से गए, करना क्या है, पर प्रैक्टिकल करना क्या है। मुरली तो बहुत अच्छी थी, क्लास भी बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, अच्छा सभी था, पर करना क्या है, हाँ कहाँ से शुरू करना है और करना क्या है। हाँ तो स्टॉक बनना है, और क्लियर कट गाइडलाइंस हो हमारे पास, क्लियर कट गाइडलाइंस कि क्या करना है। इसी मुरली में कहा है सोचो आज्ञा क्या है, आज्ञा है या नहीं है, सोचो, बाबा ने कहा सोचो इस बारे में, आज्ञा है या नहीं है। हर चीज के लिए बाबा ने कहा आज्ञा दी है। अब हम सोचते हमारे जीवन में परिस्थिति है, इसका उत्तर तो मुरली में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है ये जीवन की समस्या। परंतु उत्तर दिए है, क्या हमने उन सभी मुरलियों का अध्ययन किया है 69 से लेकर अब तक 2016 तक, और किया भी है तो हमारा अध्ययन करना, अर्थात जैसे कई लोग आके कहते हैं हमने अभी 69 की मुरलियां पढ़नी चालू की है, पढ़ लेते हैं हो गया पूरा, उसके बीच में वो कितनी गहरी है, उसकी गहराई में उतरे, पढ़ तो लिया, अभी ये एक ही मुरली चालू है, अभी हमारी खत्म ही भी नहीं हुई है, और कितना हम फिर भी कितना ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, ये जो चर्चा चल रही है बहुत सुपरफिशियल चर्चा है। वास्तव में इसका एक ही पॉइंट की चर्चा घंटों तक चल सकती है, जो चर्चा यहाँ हो रही है एकदम जस्ट ऊपर ऊपर से, क्योंकि टाइम पर पूरा करना है। आज्ञाकारी ही शब्द इतना है कि उसमें कितनी गहराई है, ओबीडियंस ही टॉपिक इतना है, इतना बड़ा टॉपिक है। श्रीमत मन्मत परमत, श्रीमत को ढूंढो, ये हम कार्य, मेरे जीवन में ये समस्या, इसके लिए बाबा ने कुछ कहा है या नहीं कहा है। अगर हमें पता है कि हमें लग रहा है कि नहीं कहा है, तो उनसे पूछो, शायद किसी और को पता हो, शायद किसी क्लास में उसका उत्तर मिल जाए। बट इट इज देयर, हम ये नहीं कह सकते कि बाबा ने कहा है, मैंने सब कुछ बता दिया है तुम्हें। शायद कहीं ना कहीं छोटी सी एक लाइन होगी लास्ट में, पार्टियों से मुलाकात की लास्ट लाइन, वही हमारे जीवन के प्रश्न का हल है, कहीं ना कहीं एक लाइन में। नेक्स्ट, मधुबन में माया के रूप क्या क्या है, वो बताएंगे जो मधुबन निवासी नहीं है। इसने बाबा ने कुमारों से मुलाकात, बाबा कह रहे हैं कुमारों को कि यहाँ मधुबन में भी किसको माया आती है, मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ती है। अभी वो बताओ, 5 मिनट हमारे पास है, मधुबन में माया के स्वरूप पहले बहनों से चालू करते, 3 बहनें बैठी है बताइए।
तो तीनों मौन है,
तीनों मौन है। मधुबन में माया के रूप जल्दी जल्दी बताओ, आपको क्या लगता है यहाँ आने के बाद कौन सी माया आ गई? संकल्प तो करके आए थे बहुत अच्छा यहाँ पर यहाँ आके कुछ और ही चालू हो गया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, उधर आप नहीं बताएंगे, वो ये लोग को बताने। तो मेहनत नहीं करते? नहीं नहीं दूसरा बताओ, ये नहीं, ये नहीं। हाँ जो मधुबन यहाँ नहीं रहते वो बताएंगे। अशोक भाई नहीं, रुको आप यहाँ ही रहते हो, दूसरे बताएंगे। मधुबन में माया के रूप हाँ, व्हाट्सएप, वेरी गुड। यहाँ आए तो पता चल गया यहाँ वाईफाई वगैरह फ्री है, कोई जगह बस लग गए वहां पर, वो एक माया बन गई जैसे सोशल मीडिया। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया में मिल जाए। इतना सस्ता नहीं है। दूसरा है, यहाँ तो आ गए शरीर से, मन वहां हुआ है, अभी भी उधर की कारोबार चल ही रहे, क्योंकि आधा छोड़ के आए तो आधा वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, उसी का चिंतन चल रहा है। ये एक माया बन गई, यहाँ आए किस लिए थे और कर क्या रहे? दूसरा, तीसरा, मधुबन में माया, भोजन, सबसे पावरफुल माया तो ये है, भोजन
बनाना पड़ेगा।
नहीं नहीं नहीं, माया के रूप में सारा समय उसमें ही जा रहा है, ये खाऊं कि वो खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, यहाँ क्या बना वहाँ क्या बना, इधर ये बना उधर वो बना। तो ये भोजन ही माया बन गई, ऐसा ना हो जाए, भोजन के ही पीछे लगे हुए, कुछ बनाने के ही पीछे लगे हुए, आए थे तपस्या करने और सब कुछ बना बनाया भी है, परंतु नया नया बनाने में अलग से प्राइवेट सेपरेट स्पेशल फ्राई करके छोक लगा लगा के उसको टेस्टी बना बना के खाना। हाँ उसके तहत में ये है, ये कहाँ से लाया वो कहाँ से लाया, ये कहाँ मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो जनरल में था ही नहीं, फिर पता चलता है वो उधर बन रहा है, तुरंत पहुंचा उधर।
कढ़ाई धुलाई कर रहा था तो उधर से तुम दादी आ गई, बोले क्या हो रहा है दादी, कोई ऐसे झूठी छोड़ के मैं उसकी धुलाई कर रहा हूँ।
वो अपनी तैयारी में था।
तो यहाँ आके भोजन, वहां तो चलो भोजन बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, पर यहाँ तो जो है वो चुपचाप तुरंत टाइम भोजन में ना जाए, वेस्ट ना करे ज्यादा, जाए चुपचाप भोजन खा के तुरंत आउट, उसमें फिर बहुत सारा चिंतन उसके बारे में सोचना, यही माया बन जाए, ये ना हो। एक एक बीच में हमारे पास एक ओपीडी में 2 बहनें आई थी, एक बहन दूसरी बहन को लेके आई थी, तो वो कह रही थी ये हर आधे आधे घंटे में इसको भूख लगती है। ये खाती रहती है बस। तो थोड़ा हमने हिस्ट्री पूछा उसका, तो थोड़ा कुछ और बातें पता चली थी कि शायद उसे बहुत बंधन है उधर जहाँ रहती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो नहीं खाना ये नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हर चीज गिन गिन कर है, फ्रिज में गिन गिन कर चीज रखी हुई है, ये गेस्ट के लिए ये वो। तो यहाँ आके जैसे वो जो सप्रेशन जो हुआ है दमन, वो पूरा बाहर निकलता है इधर आके। वहां की उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कैसे, तो समझा समझा के मन को मार मार के मार मार के, पर इधर आए तो वो पूरा बाहर, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, कहां से कुछ मिल जाए। तो भोजन भी माया बन सकती है, और स्वभाव संस्कार की टक्कर, यहाँ आ जाए बाबा से मिलन मनाने और किसी के साथ झगड़ा ही हो जाए, जिसके साथ रहते हैं कमरे में उसी के साथ झगड़ा, वो लाइट ऑन करता है हमको बंद चाहिए, वो खिड़की चालू करता है हमको बंद चाहिए, वो आता है पैर ही मारता है जोर से और जाता है, चप्पल ही कहीं रखता है, उसको बाथरूम में जाता है तो जल्दी ही नहीं निकलता है, रात को सोता है तो खर्राटे, ये आए थे प्रभु मिलन करने और कुछ और ही करने लग गए। दूसरी लीलाएं हो गई, इसी में फंस गए। और शॉपिंग करने निकल पड़ते हैं यहाँ पर, ये खरीदू को वो खरीदू, यहाँ खरीदू वो खरीदू, इसके लिए खरीदू वो, वहां जाऊंगी तो माताएं आती ना बहू के लिए बेटे के लिए ननद के लिए, सब कुछ खरीदने में ही टाइम जाता है उनका, सब कुछ खरीद के लेके जाती। हाँ एक्सेप्शन तो है तो शॉपिंग में टाइम चला जाता है, फिर है घूमना फिरना, इधर जाओ उधर जाओ, इसको मिलू उसको मिलू, ऐसे लगता है बहुत सबको मिलना चाहिए, पर उसमें मिलना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें बहुत टाइम भी चला जाता है, फिर टाइम चला जाता है, एनर्जी चली जाती है, वो कहेगा चलो मेरे साथ यहाँ घूमने चलो, तो उसके साथ वहाँ घूमने जाओ, फिर इधर घूमने घूमने घूमते 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 टाइम गया, यहाँ आए थे किस लिए, ये तपस्या भूमि है, सेवाएं तो वहां पर भी की जा सकती है, यहाँ तपस्या करनी है, या बाबा के चार धाम जो है उसका अनुभव करना है, वो सब रह गया और यहाँ एक दूसरे से मिलना ही ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबन में मेहनत क्यों? फिर लास्ट प्रश्न है, बाबा को पत्र लिखो तो बाबा ने, ये तो मुरली एक्चुअली वैसे भी बड़ी है, परंतु फिर भी ये मुरली बीच में एंड कर दी है, इसके आगे भी बहुत सारी मुरली है, ये जो तन मन धन जन है, आगे दिल के बारे में भी है, अगर दिल बाप को दे दी तो किसी और में क्यों लगती है, फिर ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न है। यहाँ बाबा ने पूछा है, बाबा को कौन सा प्रश्न लिखो, वो पत्र लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूँ बाबा मैं, ओके हूँ मैं, वेरी गुड हूँ और मैं विघ्न विनाशक हूँ, ओके का अर्थ ओ ओके, बाप और राजधानी याद है, ये अर्थ है, इतना आसान मत समझना ओके हूँ करके, ये दोनों याद है तो ओके, ओ और के। कभी दादी जानकी ने किसी को पूछा था कि कैसे हो, ठीक हो, उसने कहा दादी ठीक हो, दादी ने पूछा ठीक हो का अर्थ जानते हो, ठीक हो अर्थात बाप समान हो, वो पीछे हट गया ठीक अर्थात बाप समान ये कहीं और की बात है, पर ये वहां की बात नहीं, शायद विदेश की है। तो ओके ओके हूँ, क्या ये कह सकते हैं हम कल बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा हम बिल्कुल ओके, कोई प्रश्न नहीं है जीवन में, कोई समस्या नहीं है, नहीं तो बाबा के सामने सीधा आते ही आक्रमण प्रश्नों के साथ, इसने ये किया उसने वो किया, ये ऐसा कर रहा है वो वैसा करता है, इतने प्रश्न, प्रभु मिलन एक तरफ, फरियादी फरियाद
हो
वो तो है। तो बाबा को हम कह सके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके, कोई प्रश्न नहीं है, वेरी गुड, और विघ्न विनाशक के लिए भी बाबा ने कहा है, गवर्नमेंट का ध्यान तब जाएगा जब तुम विघ्न विनाशक बनोगे, विघ्न विनाशक अर्थात विघ्न वार ना करे, हार हो जाए विघ्नों की। तो ये कल की मुरली से 16 प्रश्न थे, कल 16 तारीख, 16 कला संपूर्ण बन के जाना है, 16 श्रृंगार कर जाना है बाबा के सामने, कल सुबह मुरली चलेगी, उसको ध्यान से सुनना, फिर पढ़ना ध्यान से, और सारे दिन भर उसी मुरली पर अध्ययन करना, श्रेष्ठ चिंतन करना, अपने विचारों को अपने मानसिक तल स्तर को ऊपर रखना, ताकि शाम तक हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली हो और हम एक शक्तिशाली मिलन बाबा से कर सके। ओम शांति।